आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम चिकित्सा की दो पद्धति एलोपैथी और आयुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल चिकित्सा की ये दो विधाएं इलाज की उस व्यापक ज़रूरत की अहम अंग हैं जिसकी आयुर्वेद अगर बुनियाद है तो एलोपैथ छत। पूरे विश्व में लगभग 50% लोगों को ही आवश्यक चिकित्सा प्राप्त हो रही है। भारत में एलोपैथी चिकित्सा जो लगभग 250 वर्ष पुरानी है केवल 40% लोगों को ही प्राप्त हो पा रही है। सरकारों के सभी प्रयास के बाद भी सबकी चिकित्सा उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण विषय है। 24 अप्रैल 2020 को इसे नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के रूप में स्थापित कर भारत सरकार ने इसे नया स्वरूप दिया है। होम्योपैथी के जनक ने दिया एलोपैथी नाम। जिस एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का आज बोलबाला है 17वीं शताब्दी तक उसकी कोई पहचान नहीं थी। वर्ष 1796 में जर्मन फिजिशियन सैमुअल हनीमैन ने होम्योपैथी नामक चिकित्सा पद्धति की खोज की। इससे पहले एलोपैथी चिकित्सा पद्धति प्रचलन में तो आ गई थी लेकिन उसे वैश्विक पहचान नहीं मिली थी। अलग अलग देशों में उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। अमेरिका में उसे ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1810 में हनीमैन ने ही इस पद्धति को एलोपैथी नाम दिया जिसे वैश्विक रूप से स्वीकृति मिली। इससे पहले यूरोपीय देशों में यूनानी चिकित्सा पद्धति प्रचलन में थी जो वैज्ञानिक न होकर विश्वास पर आधारित थी। 19वीं शताब्दी में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर काफ़ी शोध हुए। इसके कारण रोगों के निदान में यह प्रभावी होती गई और लोगों में इसकी स्वीकार्यता भी बढ़ी। आज यह वैश्विक तौर पर सबसे अहम और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के रूप में जानी जाती है। दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति में से एक है। हालांकि इस चिकित्सा पद्धति को अब तक व्यापक विस्तार नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ आयुर्वेद के करीब 2000 वर्ष बाद प्रचलन में आई एलोपैथी प्रयोग और अनुसंधान के दम पर काफ़ी आगे निकल गई। हालांकि विगत कुछ वर्षों में पारंपरिक और असरदार चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को आधार और विस्तार देने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर पहल की है। परिणाम स्वरूप चिकित्सा पद्धति का प्रसार उस वर्ग में भी बढ़ने लगा है जो अब तक इसे जड़ी बूटी भर समझता रहा। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद प्रकृति आधारित इस पुरातन चिकित्सा पद्धति में शारीरिक संरचनाओं प्राकृतिक क्रियाओं और ब्रह्मांड के तत्वों के समन्वय के सिद्धांत पर इलाज का प्राविधान है। माना जाता है कि आयुर्वेद का जन्म ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ। इसकी आधारशिला हिंदू दार्शनिक विद्यालय वैशेषिक और तर्क विद्यालय न्याय में रखी गई। यह अभिव्यक्ति की रूपरेखा से भी जुड़ी है जिसे सामाख्या के नाम से जाना जाता है। सामाख्या की स्थापना भी उसी समय हुई थी जब वैशेषिक और न्याय विद्यालयों का बोलबाला था। वैशेषिक विद्यालयों में रोगों की स्थिति की पढ़ाई होती थी जबकि न्याय विद्यालयों में इलाज शुरू करने से पहले मरीज और रोग की स्थिति के बारे में पढ़ाया जाता था। वैशेषिक विद्यालय किसी तत्व को 6 प्रकार में विभक्त करते हैं: द्रव्य, विशेष, कर्म, सामान्य, समावयव और गुण। बाद में वैशेषिक और न्याय विद्यालयों का विलय हो गया और उन्हें न्याय वैशेषिक विद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। न्याय वैशेषिक विद्यालयों ने ही प्राचीन ज्ञान को विस्तार दिया और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। इन स्कूलों की स्थापना से पहले और आज भी आयुर्वेद का जनक पृथ्वी की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद व अथर्ववेद में भी चिकित्सा प्रणाली का उल्लेख है। ऋग्वेद में 67 पौधों जबकि अथर्ववेद और यजुर्वेद में क्रमशः 293 व 81 औषधीय पौधों का जिक्र है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इन वेदों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है। अथर्ववेद और ऋग्वेद की रचना आत्रेय ऋषि ने की। ऐसा माना जाता है कि इन्हें इसका ज्ञान भगवान इंद्र ने दिया था। इंद्र ने खुद ब्रह्मा से यह विधा सीखी थी। अग्निवेश ऋषि ने वेदों के ज्ञान को संग्रहित किया, जिसका संपादन चरक और कुछ अन्य ऋषियों ने किया। इस रचना को चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। चरक संहिता में जहाँ रोगों और उसके उपचार का वर्णन है, वहीं सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का उल्लेख है। आयुर्वेद का मानना है कि पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। इनमें वायु, जल, आकाश, पृथ्वी व अग्नि शामिल है। आयुर्वेद में इन्हें पंच महाभूत कहा गया है। मनुष्य के शरीर में 3 विकार पैदा होते हैं, पित्त दोष, वात दोष व कफ दोष। इन्हें त्रिदोष कहा जाता है, जो 5 उपदोषी के साथ मिलकर शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि मनुष्य के शरीर में 7 धातु यानी 7 ऊतक हैं, रस, मेद, रक्त, मज्जा, अस्थि, मंस व शुक्र। इनके अलग अलग काम हैं और रोगों के निदान में भी इनकी अहम भूमिका होती है। अब ऑडियो के अंत में हम 5 दिसंबर यानी आज की तारीख को क्या विशेष हुआ था इस बारे में बताएंगे। 1971 में आज ही यानी 5 दिसंबर को ही स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश को मान्यता देने वाला और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला भारत पहला देश था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का गठन हुआ था। बांग्लादेश के साथ भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध हैं।